ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हम सब बैठे हैं, सभी स्टूडेंट हैं और सबको अपनी अपनी परीक्षा की चिंता भी है। चिंता माना ओना, ख्याल है, सावधानी है कि हमारे नंबर ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। जैसे लौकिक यूनिवर्सिटी में हाजिरी गिनती होती है बच्चों की, अगर किसी की 50% से कम हाजिरी होती है तो उसको शायद परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। बाबा के घर में भी हाजिरी का महत्व है। बाबा ने कहा है रोज मुरली सुनो, और सेंटर पे कोई रोज नहीं आता है तो उसको जागृत किया जाता है, भाई रोज क्यों नहीं आती हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कैसा होता है कि एक बच्चा रोज कॉलेज में जाता है, उसकी गैर हाजिरी एक भी नहीं है, लेकिन जब परीक्षा आती है तो वो फेल हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाजिरी बिल्कुल पॉइंट पे होती है, लेकिन परीक्षा में वो टॉपर हो जाते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं देखने में मिलता है। यहां भी ऐसे है, हम जो रोज मुरली सुनते हैं उसका महत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व इस बात का है कि जब कोई परीक्षा आई तो क्या हमने उस मुरली को अप्लाई किया। नंबर मुरली सुनने के नहीं है, मुरली को अप्लाई करने के है। उस समय उस परीक्षा में हमने बाबा के कौन से गुण को यूज किया, बाबा की कौन सी शक्ति को यूज किया, बाबा के कौन से ज्ञान के पॉइंट को यूज किया, और उसको यूज करके हम उससे बाहर आ गए तो हमें 100% मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने कहा था परिस्थिति में भी प्रगति। परिस्थिति अपना काम करती रहे और हमारी प्रगति होती रहे, वो अपना काम करे हम अपना काम करें। और इसका आधार है हमारे गुण बढ़ें, शक्तियां बढ़ें। संगम युग की तीन दौलत है बहुत बड़ी, एक ज्ञान, गुण और शक्ति, ये तीन बड़े बड़े खजाने। एक मुरली में बाबा ने कहा था नौलखा हार नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, पर आप बाप के गले के हार हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं है, लेकिन आपका एक एक गुण, हीरे जवाहरात मोती माणिक, उनसे भी अमूल्य है। तो संगम युग की ये दौलत है, जो मेरी गुण है वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वही मेरी दौलत है, वही गुण मुझे सीखने हैं, गुण मुझे धारण करने हैं, गुण मुझे चुराने हैं, और मुझे नकल भी गुणों की करनी। अगर ये इतने बड़े अपमान के बाद भी नम्र रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। अगर ये इतने अभाव में होते हुए भी हर्षित रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता, मुझे नकल करनी है सबके गुणों की। अगर ये इतना बीमार होते हुए भी बीमारी को महसूस नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं ये कर सकता। यही हमारी पढ़ाई है, गुणों की चोरी करो, गुणों की नकल करो, गुणों को बढ़ाते जाओ, गुण सीखते जाओ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि दत्तात्रेय जो थे उसने 24 गुरु बनाए, जल पृथ्वी आकाश पांचों तत्व बनाई, चंद्रमा सूर्य सागर इनको बनाया, हाथी अजगर सांप भृंगी मछली पतंगा इनको भी बनाया, कुमारी कन्या उसको भी गुरु बनाया। सबके उसने अपने ढंग से गुण वर्णन किए हैं। तो हमको भी तो सबसे गुण सीखने, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन, सब में गुण भरे पड़े। किसी भी चीज पे हम नजर डालेंगे तो उसमें कोई ना कोई सिखाने वाला गुण जरूर है। हम आज अपनी बात की चर्चा सबसे पहले एक छोटे से बीज से करते हैं। एक छोटा सा बीज देखिए, बादाम का बीज है, चने का बीज है, किसी भी पेड़ का बीज है, पौधे का बीज है, फूल का बीज है, कोई भी है। अब बीज में कितने गुण है? अगर आप एक बादाम के बीज की चर्चा करें तो बादाम की कीमत बाजार में कितनी है? 300 रुपए किलो होगी, 350 होगी, 400 होगी, बस ऐसी ही है ना। लेकिन बादाम से एक ऑयल निकलता है, उसकी कीमत कितनी होती है? कई गुना ज्यादा होती है। क्यों? वो बादाम का ही प्रोडक्ट है, फिर उसकी इतनी कीमत क्यों है? एक कारण तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट में वो थोड़ा निकलता है। बादाम अगर 10 ग्राम का दाना है, 5 ग्राम का दाना है, तो उसमें से 1 ग्राम भी नहीं निकलेगा। एक कारण तो ये भी है, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि उस ऑयल को प्राप्त करने के लिए बादाम को कितनी परिस्थितियों में से गुजारा गया। तो जब कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों में से गुजरता है, विपरीत बातों का सामना करता है, और उनका सामना करने के बाद जो कुछ मिलता है वो बहुत अमूल्य होता है, बेशक वो एक बूंद जितना ही हो। सहज नहीं मिला, वो बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत उसको पीसा गया, रगड़ा गया, उसके बाद वो थोड़ा सा तेल मिला, तो उसकी कितनी कीमत है। मनुष्य भी जब बहुत इस प्रकार की बातों में से क्रोस होता है, उसके बाद उसके हाथ में एक अनुभव का मोती आता है, और उस अनुभव के मोती की कीमत कितनी होती है? उस पे वो एक किताब लिखता है, वो किताब कितनी बिकती है, वो अनुभव कितने लोगों को सुनाता है, सुन करके लोगों का जीवन बदलता है। तो वो अनुभव रूपी ऑयल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कैसे मिला? इजीली नहीं मिला, उसके लिए बहुत परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा। तो हम अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा माया की अथॉरिटी से बड़ी है अनुभव की अथॉरिटी, लेकिन वो अनुभव मिलेंगे कैसे? इजीली नहीं मिलेंगे। जितनी अधिक उतार चढ़ाव देखेंगे उतने जीवन में अनुभव बढ़ेंगे। कई लोग उतार चढ़ाव से डरते हैं, मना प्राप्तियों से डरते हैं। अरे इनमें से गुजर गुजर के ही तो आदमी अनुभवी बनता, अमूल्य बनता है, कीमती बनता है। तो एक तो हम बीज से ये सीखते हैं कि उसमें जो कुछ अमूल्य है वो बाहर तब निकलेगा जब वो पीसा जाएगा। दूसरा बीज से हम क्या सीखते हैं? एक बीज के भीतर बहुत शक्तियां हैं, एक बड़ा पेड़ बनने की शक्ति है। तो इसके लिए बीज को क्या करना पड़ता है? मेरी शक्तियां प्रकट हों, मेरे से फूल खिलें, मेरे को फल लगे, तो इसके लिए उसको जमीन के भीतर जाना पड़ता है। और जमीन के भीतर कितनी घुटन है, और जमीन कहती है मैं तो तुमको दबा दूंगी, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस अंधेरी कोठरी में जाता है जहाँ कुछ भी नहीं है उसके लिए, कोई सहयोग नहीं, कोई सहारा नहीं, और वहाँ कहीं से उसे थोड़ी सी नमी मिलती है और जाता भी औंधे मुंह है, उल्टा मुंह करके जाता है, और थोड़ी सी नमी मिलती है, उसके होठ थोड़े से गिल्ले होते हैं, और जैसे ही गिल्ले होते हैं वो होठ खुल जाते हैं, और खुलने के बाद उसके भीतर की जो शक्तियां हैं वो बाहर निकलने के लिए जैसे आतुर हो जाती है, और जैसे ही वो होठ खुलते हैं उसमें ताकत आ जाती है, वो उल्टे से सीधा हो जाता है अंदर ही अंदर। सीधा होने के लिए जगह भी नहीं है, बाहर के जगत में तो हम कहते हैं जी मुड़े कैसे, ऐसे कैसे जाए, स्पेस नहीं है, तुम हटो तुम हटो, और बीज कहाँ से स्पेस बनाता है और कैसे वो उल्टे से सीधा हो जाता है, जब बाहर निकलता है तो सीधा होके बाहर निकलता है। अब जब वो बाहर निकलता है, आंखें खोलता है, रोशनी को देखता है तो खुश तो होता है, सोचता है मैं दम घोटू वातावरण से बाहर आ गया, लेकिन बाहर भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे पहली चुनौती क्या है? सबसे पहली चुनौती ये है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो हवा का झोंका आता है, और हवा कहती है मैं तो तुमको हिलाऊंगी डुलाऊंगी, वो कहता है कोई बात नहीं है ये तो झूला है झुलाओ, तो हवा इधर आती है तो इधर झूल जाता है, इधर आती है तो इधर झूल जाता है। फिर कोई चिड़िया आती है, कोई कबूतर आता है, उसका जो कोमल तना है, कोमल पत्ते हैं, उनको चोंच मारता है, बहुत मजा आता है उस, इसलिए बाबा कहते हैं कोमल पौधों को माया आती है, जो नए नए ज्ञान में चलते हैं उनको माया को खाने में मजा आता है, जो पक जाते हैं, जो पेड़ का तना पक जाता है ना उसको कोई चोंच नहीं मारता क्योंकि वो तो इतना खुरदुरा हो जाता है, लेकिन जो कोमल होता है कच्चा होता है तो उसको चोंच मारनी बहुत आती है, लेकिन ये बेचारा अपनी पीड़ा को पीता जाता है क्योंकि इसको जीना है और जीने के लिए ये तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर हवा तो विजातीय थी, तोता चिड़िया भी विजातीय थे, लेकिन इसके कुछ सजातीय पौधे, इसके अपने लोग, वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो इससे ज्यादा लंबे होके इसको ढकने की कोशिश करती है ताकि सूर्य की किरणें इस तक ना पहुंचे। कुछ हैं जो इसके हिस्से की खाद खा जाते हैं, ये बेचारा छोटा सा रह जाता है और इसके नीचे का जल वल सब चट कर जाते हैं, उसको भी ये सहन करता है। इतनी सारी बातें सहन करते करते थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर इसको कली फूटती है, वो कली फिर फूल बनती है, इसमें भी फिर उन कली और फूलों से आकर्षित होके माया फिर आती है, तो उनके ऊपर भी प्रहार होते हैं। लेकिन जो माली है वो क्या करता है, इसके आसपास जो झाड़ झंकाड़ उगाई उसको उखाड़ देता है, देखता है बड़ी हिम्मत से ये बढ़ रहा है, पांव रोपे खड़ा है तो मदद करता है, तो जब शिव बाबा देखता है बच्चा हिम्मत करके आगे बढ़ रहा है फिर मदद करता है, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और जो हार खा जाता है सूखने लगता है फिर भगवान कुछ नहीं कर सकता, वो भी तो माली है ना, देखता है। और इतना संघर्ष सहन करने के बाद जब उसको फूल खिलता है तो उसकी बड़ी महिमा होती है, लोग इशारे करके कहते देखो ये पौधा कितना सुंदर है, इसको कितना अच्छा फूल खिला हुआ है, खड़े होके उसको देखते हैं कितना सुंदर है कितना सुंदर है। पर इतनी महिमा कब हुई? जब उसने बहुत कुछ झेला। तो ये एक तरह से हमारी ही कहानी है, जब हमारे ऊपर भी गुणों के फूल खिलते हैं तो लोग कहते हैं देखो ये कितना गुणवान है, ये कितना महान है, ये कितना नम्रचित्त है, ये कितना सच्चा है, इशारा करती है, लोग एक दो को बताती है, मैं इसके साथ रहा हूँ, ये बहुत नम्रचित्त है, मैं इसके साथ रहा हूँ, ये बहुत ऑनेस्ट है, कहानी बन जाती है फिर उसका जीवन। लेकिन इतने गुण जीवन में आए और केवल आए नहीं, वो टिके रहे। कई बार कोई गुण आता है परिस्थिति वश और फिर चला भी जाता है, टिकता नहीं, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाए। कोई हमें कभी भी देखे तो वो गुण रूपी फूल हमारे साथ ही दिखाई दे, तब हम कहेंगे कि वो चीज हमारे व्यक्तित्व में रम गई, वो गुण हमारे व्यक्तित्व में रम गया, हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन गया। तो ये हमने बीज का गुण देखा जो हमारे आध्यात्मिक जीवन से बहुत मिलता जुलता है। हम भी अपने भीतर की शक्तियों से अगर संसार को खुशबू देना चाहते हैं तो हमें भी हर परिस्थिति में रहते हुए अपने गुण को बचा के रखना है। ऐसे नहीं छोटी सी बात आई और उत्तेजना आ गई, ऐसे नहीं छोटी सी बात आई और किसी के लिए दुर्भावना आ गई, तो फिर वो फूल खुशबू कैसे देगा। फिर हमारे चारों ओर देखिए और कौन सी चीज है, जल है, जल से भी हम बहुत अच्छा पाठ सीख सकते हैं। पानी, पानी की कितनी विशेषताएं हैं। पानी की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि उसमें समायोजन करने की ताकत, कहीं भी डाल दो वहीं एडजस्ट हो जाता है। कटोरी में डालो तो कभी नहीं कहता कि इसका आकार छोटा है कि बड़ा है, मैं इसमें नहीं समाऊंगा। गिलास में डालो, नली में डालो, चुल्लू में डालो। एक चाइनीज कहावत है कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो पानी को अपना गुरु बना लो। अगर पानी को हमने गुरु बना लिया तो पानी वाले सारे गुण आ जाएंगे। एक तो समायोजन की बहुत ताकत, आज के युग में हम देखते हैं कि लोगों में समायोजन की ताकत नहीं होती है। थोड़ी भी विपरीत बात आ गई, विपरीत लोग आ गए, विपरीत घड़ी आ गई तो मन बड़ा उद्वेलित हो जाता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कैसे होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे। मुझे याद है मैं कुछ दिन पहले बॉम्बे में गई थी तो एक माताजी सेंटर पे जो रोज क्लास करती है वो मुझे निमंत्रण देके गई, कहती है मेरे घर आना, बहन जी को भी कह रही थी बहन जी को लेके मेरे घर आना और हमारे बच्चों को क्लास कराना। मैंने कहा बड़ों को नहीं, बच्चों को। कहती नहीं, बच्चों को बहुत जरूरत है ज्ञान की, बच्चों को क्लास कराना। तो हम उनके घर गए तो मैंने कहा माता जी ले आओ बच्चों को, आपने कहा था ना बच्चों को क्लास करानी है। तो बच्चे कुछ ज्यादा थोड़े थे, आजकल बच्चे घरों में दो या तीन ही होते, दो एक भाई के बच्चे, दो एक भाई के, केवल चार बच्चे थे, बड़े भी बैठे पर बच्चे भी बैठे। तो मैंने पूछा माता जी प्रॉब्लम क्या है, तो कहती है हम जो बड़े लोग हैं ना, हम रिश्ते निभाते हैं, मेरी छह नंदे हैं, पति की छह बहनें हैं। बुजुर्ग महिला 80 साल की वो सुना रही थी, तो वो मुझे मिलने आती है, मेरा उनसे बहुत प्यार है, आमतौर पे तो प्यार होता नहीं है पर उसका प्यार है। मिलने आती है बॉम्बे में, कभी एक आ गई फिर दूसरी आ गई, तो ये बच्चे कहते हैं दादी ये हमारे घर क्यों आती है। बच्चों का पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये आती है तो ये घर में क्यों रहती है, इन्हें होटल में रखो। एक दिन मैंने बच्चों को कह दिया कि बेटा आज तुम दोनों एक कमरे में सो जाओ और ये कमरा जो बुआ आई है ना उसको दे दो। तो कहती है नहीं, हम अपना कमरा बिल्कुल नहीं देंगे, आप इन्हें कहीं भी ले जाओ, या अपने कमरे में सुलाओ या होटल बुक करा दो, पर हम अपना कमरा नहीं देंगे। तो बहन जी इनको ये सिखाओ कि एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। जीवन बड़ा लंबा है, क्या पता कल को ऐसा हो जाए कि एक ही कमरे में सारे कुंबे को रहना पड़े, परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती। तो हमारे बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं, स्कूल भी महंगे हैं, पढ़ाई भी महंगी है, पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन ये जो जीवन के जरूरी पाठ है, किसी के लिए अपनी सुविधा का त्याग करना, थोड़ा सा अपने को सिकोड़ लेना, एक दिन के लिए अपने आराम का परित्याग कर देना, ये पाठ इनको पढ़ाने जरूरी है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि इनको ये पाठ आप पढ़ा के जाओ। तो मैंने कहा एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी क्या प्रॉब्लम है, दूसरी ये प्रॉब्लम है कि बाथरूम में घुस जाते हैं और मैं 80 साल की हूँ और फिर कहते हैं दादी टॉवल पकड़ाना, मग्गा पकड़ाना, बाल्टी पकड़ाना, और अगर मैं ना पकड़ाऊं तो रूठ जाते हैं, कहते हैं दादी ने कहना नहीं माना। पानी में एक बहुत बड़ा गुण है समायोजन का, जैसा भी स्थान हो वहीं पे वो एडजस्ट हो जाता है। और दूसरा उसमें गुण है वो बहता है, बहना उसकी नेचर है। अगर हम उसे खड़ा करते हैं तो जबरदस्ती बांध बना के खड़ा करते हैं, लेकिन उसकी खड़ा होना नेचर नहीं है, बहना उसकी नेचर है, बहते जाना, चलते जाना। और अगर उसके रास्ते में कोई आ जाता है, जो व्यक्ति बहेगा, यात्रा करेगा, चलेगा, तो रास्ते में बहुत बातें आएंगी, पानी के रास्ते में भी बहुत कुछ आता है, लेकिन जो रास्ते में आता है उसको देख के वो कभी रुकता नहीं है, उसके साथ कभी संघर्ष नहीं करता, उसका कभी सामना नहीं करता, उससे कभी जिद नहीं करता कि तू मेरे रास्ते में क्यों आ गया, तू हट, मुझे बहना है, सामने वाले को बदलने की कभी कोशिश नहीं करता, वो अपने को बदलता है। सामने चट्टान आ गई तो क्या करेगा, छोटी चट्टान है, ज्यादा बहाव है तो ऊपर से निकलेगा, थोड़ा पानी है, चट्टान यूं फैली है तो आधा इधर से निकलेगा, आधा इधर से, दो हिस्सों में, चट्टान के बीच में खाली जगह है तो उस खाली जगह में से निकल जाएगा। वो कहता है तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम है रोकना, तुम अपना काम करती रहो रोकने का, और मेरा काम है बहना। जब तुम अपना काम नहीं छोड़ती तो मैं अपना काम क्यों छोड़ू, और तुम्हारे साथ मैं टक्कर खाऊं और तुमको कहूं कि तुम हटो, इतनी मुझे फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, तुम तो सदियों से यहीं खड़ी थी और यहीं खड़ी रहोगी, मेरी यात्रा तो बहुत लंबी है, इसलिए मेरे पास एक सेकंड भी नहीं है खराब करने के लिए, मुझे बहना है और मैं बहूंगा, हर परिस्थिति में बहूंगा, और सचमुच वो बहता जाता है। तो हमारा जीवन उस चट्टान जैसा नहीं है, हमारा जीवन पानी जैसा है, हमको आगे बढ़ना है, बहना है, और अगर चट्टान आ भी जाए तो डरना भी नहीं है और समय खराब भी नहीं करना है, क्योंकि जिनके लक्ष्य ऊंचे होते, जिनके लक्ष्य महान होते हैं, उनके पास एक सेकंड भी नहीं होती है कि वो किसी से तू तू मैं करे, किसी से व्यर्थ वार्तालाप करे, किसी से संघर्ष करे, किसी से विवाद करे, वो तो अपना रास्ता निकालता है और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता चला जाता है। और तीसरा गुण क्या है, वो अपकारी पर भी उपकार करता है। जो चट्टान उसके रास्ते में आई उसको कहता है कि मेरे साथ चलना है तो चल, तुझे भी बहा ले चलूंगा, और वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहाता है, बहाता है, बहाता है, बहती जाती हैं वो टुकड़े, और वो बड़े अवगुणी थे टुकड़े, किसी को अहंकार का कोना निकला हुआ था, किसी को ईर्ष्या का खुरदुरापन था, लेकिन अपने साथ लेकर के बहाते बहाते प्यार से धीरे धीरे उनका वो खुरदरापन भी खत्म कर दिया, उनके तीखे कोने भी खत्म कर दिए, और अब वो क्या बन गए, गोल गोल पत्थर बन गए। अब देखो उन गोल गोल पत्थरों की भी पूजा होने लगी। तो जो उसका मार्ग रोकने आए थे उन पे ही परोपकार कर दिया। बाबा कहता है जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डाले उसको भी तुम महान बना दो, जो तुम्हारा विरोध करे उन विरोधियों को भी तुम शुभ भावना दे करके बाबा के वर्षे के हकदार बना दो, जिनमें अवगुण हैं, अवगुणों के कारण ही लोग रास्ता रोकते हैं, तो उनके भी गुण खत्म, उनमें भी जीवन में गुण आ जाएं, ऐसी शुभकामना रखो। तो जब वो गोल गोल पत्थर बन जाता है तो लोग उसे उठा के उसकी पूजा करते हैं, कहां तो वो कंकर था, ठोकरों में था, और अब उसकी पूजा हो रही है। तो अपकारी पर उपकार करना, ये पानी का गुण है। गुण एव पूज्यते, कहते हैं गुणों की ही पूजा होती है। गुण और शक्तियां, इनके पीछे दुनिया की हर चीज चली आती है, लेकिन बिना गुण के और बिना शक्ति के अगर हम कोई चीज अचीव भी करना चाहते हैं तो एक बार तो मिल जाएगी, लेकिन फिर चली जाएगी, और मिल भी जाएगी तो उसका सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलता है जब मानव के जीवन में सद्गुण होते हैं, इसलिए बाबा हर रोज भिन्न भिन्न तरीके से सद्गुणों की महिमा सुनाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक संत होता है और उसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा होता है, उस घोड़े का नाम उसने सुल्तान रखा हुआ है, और उस घोड़े पर बैठ के वो सुबह शाम थोड़ा घूम लेता है, किसी चीज में उसका ममत्व नहीं है, घोड़ा उसे बहुत प्रिय है, कभी उसकी पीठ पे हाथ फिराता है, अपने हाथ से उसको दाने खिलाता है। तो एक दिन एक कोई डाकू है और वो देखता है कि संत के आश्रम में घोड़ा है, इतना बढ़िया घोड़ा, इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तो संत को इसकी क्या जरूरत है, तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे डाका डालना है तो भागना पड़ता है, बढ़िया सा घोड़ा होगा तो चोरी करके डाका डाल के और भागूंगा। तो वो संत के पास आता है, कहता है मुझे ये घोड़ा दे दो। वो कहता है मैं घोड़ा तो नहीं दूंगा, इससे मुझे बहुत प्रेम है, मैंने सारी दुनिया त्याग दी, बस एक भगवान से प्रेम है और एक इस घोड़े से प्रेम है, और इस पे बैठ के मैं हवा खाने जाता हूं, यही मेरा मित्र है, ऐसे करके वो मना करता है। तो डाकू कहता है अच्छा ये घोड़ा आपके पास रहेगा नहीं, ये बात सोच लेना, यूं नहीं दोगे तो किसी और तरीके से लूंगा, पर घोड़ा तो लेके रहूंगा। अब वो संत को चेतावनी देके चला जाता है, और संत दो चार दिन तो सोचता है कि शायद वो चोरी करने आएगा, थोड़ी घोड़े की रखवाली करता है, फिर वो भी बात भूल जाता है और नॉर्मल जीवन हो जाता है। तो एक दिन जब वो घोड़े पे बैठ के सैर करने जा रहा है संत, तो उसे आवाज सुनाई देती है जैसे कोई करा रहा है, जैसे कोई चिल्ला रहा है, जैसे किसी के शरीर में बहुत पीड़ा हो, और जब पीड़ा होती है तो मुख से कैसी आवाज निकलती है, उस तरह की कराहने की आवाज आती है। अब वो दयालु है, दया धर्म का मूल है, बाबा हमें भी कहते हैं बच्चे दयालु बनो, कोई कैसा भी हो दया करो। तो वो तो संत था, हृदय पसीज गया और घोड़े को रोका और देखा कि सड़क के किनारे एक अपाहिज पड़ा है जिसे चला नहीं जा रहा है, करा रहा, तो घोड़े से उतरा, दया आ गई और उसको उठाया, उठा करके पूछा कहाँ जाना है, तो कहता है बाबा बस थोड़ी दूर पे मेरी कुटिया है, यहाँ से 2-4 किलोमीटर, आपका घोड़ा मुझे बस वहां तक छोड़ दो, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो कहा ठीक है, तो उस अपाहिज को उठाया, घोड़े पे बिठाया और खुद घोड़े की बाग पकड़ के चलने लगा। तो अभी चलते चलते 10-20 कदम ही चला होगा, तो वो अपाहिज एकदम सावधान होके बैठ गया और झटका मार के वो बाग छुड़ा ली, और फिर कहता है मुझे पहचाना नहीं, मैं वही डाकू हूं, मैंने कहा था ना घोड़ा तो मैं लेके रहूंगा, अब तुमने मांगने से नहीं दिया तो मैंने ये तरीका अपनाया, अब घोड़े के सपने देखना भूल जाओ, ये आपको वापस नहीं मिलेगा, अपनी कुटिया में लौट जाओ। और ऐसे एकदम सीधा होके, वो तो बहाना कर रहा था, स्वस्थ था, बैठ गए। तो जैसे ही वो घोड़े को ले जाने लगा तो ये दयालु संत जिसकी रग रग में दया भरी है, बाबा कहते हैं ना बच्ची आपके पास एक गुण होगा तो दुनिया की सारी दौलत, एक भी गुण बहुत है दुनिया की दौलत को आकर्षित करने के लिए, और एक गुण के पीछे अनेक गुण आ जाते हैं। तो ये संत कहता है ठहरो भाई मेरी एक बात सुनते जाओ। कहता है मुझे जितनी मर्जी बातें सुना लो पर मैं घोड़ा नहीं दूंगा। कहता है ठीक है घोड़ा मत देना पर मेरी एक बात सुनते जाओ, ये बात किसी को सुनाना मत। अगर तुमने ये कहानी किसी को सुना दी तो लोग अपाहिजों पे दुखियों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। घोड़ा बेशक ले जाओ पर इस बात की चर्चा कहीं भी करना मत, नहीं तो संसार से दया उठ जाएगी। अब इतनी बात कह के ये घर में आके अपनी कुटिया पे आके सो गया। लेकिन वो घोड़ा लेके जैसे ही अपने जो उसका रहने का स्थान था वहां गया, उसके कान में बस एक ही बात गूंज रही है, किसी को बताना मत नहीं तो लोग दुखियों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। घोड़ा बेशक ले लो, ले लिया कोई बात नहीं है पर इसकी चर्चा मत करना कहीं भी। अब घोड़े को बांध के और सोया तो नींद ना आए, करवट बदल रहा है, इसकी चर्चा मत करना, इसकी चर्चा मत करना है नहीं तो लोग दुखियों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा, हर दुखी के भीतर उन्हें ठग और डाकू नजर आएगा। जिसका घोड़ा छीना गया वो चैन से सो गया, और जिसने छीना वो करवट बदल रहा है। अब बड़ी मुश्किल से उसकी सुबह हुई और उसने घोड़े को पकड़ा, घोड़े की बाग पकड़ी और किधर गया, संत के आश्रम पे गया। और जहां घोड़ा बंधता था उसी अस्तबल में घोड़े को बांध दिया और माफी मांगी। अब देखिए एक दया के गुण में कितनी ताकत है। संत के पास ना हथियार था, वो तो बोला भी नहीं, एक उलाना भी नहीं दिया कि तुमने चोरी क्यों की, कोई बात नहीं है तुम चोरी करते हो करो पर इसकी चर्चा मत करना क्योंकि कहीं दुनिया में दया ना खत्म हो जाए, रहम ना खत्म हो जाए। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसकी दया का गुण खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि वो उथला गुण नहीं था, वो रग रग में समाया हुआ गुण था। परिस्थिति आई तो भी दया नहीं छूटी, इतना बड़ा धोखा हो गया तो भी दया नहीं छूटी। और इस गुण के कारण गया हुआ घोड़ा भी वापस आ गया और उस ठग की ठगी भी छूट गई, कितनी सारी प्राप्तियां हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका जो एक एक दैवी गुण है उस एक एक दैवी गुण में कितनी शक्ति है, उस एक एक दैवी गुण के बल से आप कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर सकते हो, कितनों का दिल जीत सकते हो, कितनों को झुका सकते हो, कितनों का जीवन परिवर्तन कर सकते हो, कितनों को सुख दे सकते हो। तो जो परिस्थिति आती है वो क्या करती है, वो हमारे गुण को ले जाती है। हम या तो शांति को छोड़ के उत्तेजित हो जाते हैं, या तो प्रेम को छोड़ के नफरत करने लगते हैं, या तो एकाग्रता छोड़ करके और मन को हलचल में ले आते हैं। तो बात तो बिगड़ी सो बिगड़ी, मन भी बिगड़ गया, डबल नुकसान हो गया। बाबा क्या चाहते हैं कि बातें तो आएंगी क्योंकि दुनिया ही बातों की, हलचल तो आएगी क्योंकि दुनिया ही हलचल की, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो ऐसी परिवर्तनशील दुनिया में जो हम सोचते हैं सब कुछ वो थोड़े होता है, लेकिन कम से कम हम अपने मन को तो स्थिर रखें, अपने मन से गुणों को तो पकड़ करके रखें, वही तो हमारी दौलत है। संगम युग की हमारी दौलत क्या है, बाबा कहते हैं धन तुम्हारा नहीं, संबंध तुम्हारे नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं। अच्छा तो बाबा हमारा कुछ तो है, हाँ बाबा कहते हैं गुण तुम्हारे हैं, उनको पकड़ के रखो, धन को पकड़ के मत रखो, गुणों को पकड़ के रखो। और धन का प्रयोग भी इस तरीके से करो कि गुण बढ़े। कहते हैं केवल धन होने से आदमी धनवान नहीं बन जाता, अगर आप धन की टोकरी, धन की गठड़ी बैल की पीठ पे रख दे तो क्या बैल धनवान हो गया? उसका सदुपयोग वो करना ही नहीं जानता। तो धनवान व्यक्ति वो होता है जो धन का इस तरह से सदुपयोग करता है जिससे उसके जीवन के गुण बढ़े। और आज तो लोग धन का इस तरह प्रयोग कर रहे हैं कि जो थोड़े बहुत गुण थे वो भी नष्ट हो रहे हैं उस धन के प्रयोग में, या तो दिखावा है या फिजूल खर्ची है या और बहुत चीजें। तो असली धनी वही है जिसके पास गुण और शक्तियां। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और अगर आपको ये स्वमान याद है और सब शक्तियां आपके पास है तो आपकी हार जीत में बदल जाएगी, आप हर परीक्षा में पास हो जाएंगे, असफलता सफलता में बदल जाएगी। क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां पे हार हो नहीं सकती। होता क्या है कि जब कोई भी बात आती है ना तो सबसे पहले वो शक्ति ही किनारे हो जाती है और इसलिए हार हो जाती है। अब कोई बात आई और उसमें हमको चुप रहना था, समाना था, लेकिन हम समा नहीं सके, बोल पड़े, बहुत बोले, तो सामने वाले का परिवर्तन नहीं होता, सामने वाले को श्रद्धा भी नहीं बैठती, हमें भी मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन हम अपनी चुप्पी से, अपनी शुभ भावना से किसी सामने वाले व्यक्ति के गलत काम को साक्षी होके देखते हैं, समाते हैं, तो उसको बल मिलता है, वो परिवर्तन होता है। और हम बीच में ही बहुत कुछ कह देते हैं, बल नहीं मिलता है। एक और मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, ये भी एक संत की बात है। पहले हमने दया के गुण की बात की और अब हम अक्षमा के गुण की बात देखते हैं। वो संत है लेकिन वो कपड़े बेचता है आजीविका के लिए, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट लेके अपनी दाल रोटी चलाता है। तो एक ऐसी जगह जाता है जहां एक बहुत अमीर व्यक्ति और उसका एक अमीरी के नशे वाला बेटा है, तो वो बुलाता है, इधर आ मुझे साड़ियां दिखा। अपने घर में बुलाता है, पैसे का नशा है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत कुछ है। संत चुपचाप अपनी गठरी रखता है और उसमें से एक साड़ी निकालता है। वो पूछता है ये कितने की है? थोड़े पुराने जमाने की कहानी है, तो कहता है 30 रुपए की, 30 रुपए में साड़ी आ जाती थी। तो वो सोचता है कि ये संत बड़ा शांत स्वभाव का है, इसको गुस्सा दिलाना है, मजा आएगा, कुछ लोगों को खाली टाइम पास करने का यही तरीका है, किसी को इरिटेट करो, किसी को गुस्सा दिलाओ। तो वो उस साड़ी के 2 टुकड़े करता है, कहता है अच्छा बताओ इनकी कीमत क्या है? तो कहता है 15 रुपए। एक टुकड़ा आगे करता है, इसकी कीमत क्या है? कहता है 15 रुपए। फिर उसके भी 2 टुकड़े करता है, कहता है अच्छा अब बताओ कीमत? कहता है 7.5 रुपए। फिर उसके भी 2 टुकड़े करता है, अच्छा अब बताओ कीमत? तो अब कीमत कितनी होगी? 4.25 रुपए शायद। उसके बाद फिर उसके टुकड़े करता है, अब बताओ कीमत? तो अब 2 रुपए से थोड़ा कुछ कम बनेगा। अब वो बिल्कुल लीरी सी रह गई, तो उसको ऐसे गोल गोल करके और उसकी तरफ फेंकता है, कहता है अब इसमें बचा क्या है जो इसकी कीमत पूछूं आपसे? और वो चुपचाप साक्षी होके देख रहा है। फिर युवक को घमंड जागता है, जेब में हाथ डालता है, 30 रुपए निकालता है, कहता ले मैंने तेरी साड़ी फाड़ी ना, ये 30 रुपए ले ले। तो वो संत बहुत ही नम्रता से कहता है, बेटा तूने साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के लूं? तो वो युवक कहता है मैंने खरीदी नहीं पर मैंने आपका नुकसान तो किया, चलो नुकसान के ही पैसे ले लो, तो कहता है नुकसान तूने मेरा तो किया सो किया, लेकिन बेटा जिस किसान ने ये कपास उगाई और जिस कातने वाले ने सूत काटा, रंगने वाले ने इसको रंगा, और मैं इसको पीठ पे लादे लादे गलियों में घूमा, उसका क्या होगा? वो तो बेकार चली गई, किसी के भी काम नहीं आई। कोई पहनता तो काम आ जाती, तो उसको रियलाइज हुआ हाँ कईयों की मेहनत पे मैंने पानी फिरा दिया। तो कहता है अच्छा जब मैं साड़ी फाड़ रहा था आपने मुझे रोका क्यों नहीं? कहता है बेटा मैं तब तेरे को रोक देता ना, तो तेरे भीतर जो अब रियलाइजेशन हुई है, ये रियलाइजेशन का मौका तुझे ना मिलता। अब जो तेरे भीतर ये भाव जागा है कि मैंने गलत किया, ये भाव तेरे अंदर ना जागता। इसलिए मेरे भीतर तेरे लिए रहम की भावना थी, क्षमा की भावना थी, मैं चुप रहा, बोला नहीं। तुम अपने आप रियलाइज करोगे। तब उस युवक ने कहा मैं तो आपको क्रोध दिलाना चाहता था, लेकिन आपको क्रोध क्या दिलाऊं, आपने तो मेरे भीतर के ही क्रोध को खत्म कर दिया। मैं आपको क्रोधी बनाना चाहता था और बदले में आपने मुझे शांति का उपहार दे दिया, तो मैं आपके इस ऋण को कभी नहीं भूल पाऊंगा और आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। अब जो हमारे भीतर है, कहते हैं ना भाई किसी के अंदर कोई बीमारी होती है और उसके पास कोई खड़ा हो जाए तो वो कीटाणु लग जाते हैं, तो ये केवल बीमारी के बारे में नहीं है, ये गुणों के बारे में भी है। मेरे अंदर अगर एक्सट्रीम अक्षमा है तो मेरे सामने कोई कैसा भी हो, मेरी अक्षमा उस पर प्रभाव डालेगी। मेरे अंदर सहनशीलता है तो कोई कैसा भी हो मेरी सहनशीलता उस पर प्रभाव डालेगी। हाँ मुझे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा साक्षी होना पड़ेगा। अगर मैं उतावली हूं और उसने पहली गलती की और वहीं मैं रोष में बोल पड़ी तो नहीं, मुझे थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सामने वाले की एक्टिविटी को देखना पड़ेगा और फिर मौका देख करके एक औषधि की तरह से उसे एक छोटी सी बात कहनी पड़ेगी। वो बात बात नहीं होती, वो औषधि होती है, जो उस रोग की दवा होती है, जो उस दुर्गुण की दवा होती है। तो अगर हम इस तरीके से अपने घरों में, अपने कार्यालय में, अपने समाज में व्यवहार करते हैं तो बाबा हमें देख के कितना खुश होगा कि मेरा बच्चा गुणों की खुशबू फैला रहा, अपने गुणों से दूसरों के दुर्गुण हर रहा है। होली पे लोग रंग लगा रही हैं, लेकिन हमारा रंग तो है ही गुणों का। अगर मैंने किसी को गुण दान दिया तो इससे बढ़िया रंग तो कोई नहीं। 5000 साल वो गुण रूपी रंग उस आत्मा से उतरेगा नहीं। ये है हमारी सच्ची होली। तो बाबा की याद में हम सब ने आज होली खेली भी, और हमारी होली एक दिन की नहीं होती, हमारी होली तो रोज ही है। हम तो रोज ही रंग लगाते हैं, रोज ही गुलाल उड़ाते हैं और रोज ही दूसरों को खुशी देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी है किसी का दुर्गुण रूपी फोड़ा खत्म कर देना। वो जो दुर्गुण है ना, वो एक फोड़े की तरह से भीतर ही भीतर रिश्ता है, और इसलिए जिसके भीतर दुर्गुण रूपी फोड़ा रिसेगा वो फिर दूसरे को भी दुखी देगा। इस दुनिया को अगर नरक बनाया तो मनुष्य आत्माओं के दुर्गुणों ने नरक बनाया। वो भी छोटा सा दुर्गुण बड़ा होते होते बड़ा रूप धारण कर लेता है, उसके साथ कई दुर्गुण जुड़ जाते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे, गुणों की खुशबू फैलाने वाले, गुणों का इत्र छिड़कने वाले। इसकी भेंट में एक दूसरी चीज होती है जिसको कहते हैं कूड़ा करकट गंदगी। तो कहते हैं जो कूड़े जैसी चीजें होती है ना, उनको डब्बे में डाल के ढक्कन बंद कर दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं पड़ना चाहिए इसमें क्या भरा है। और जो सेंट होता है, इत्र होता है, खुशबू वाली चीज होती है, वो उड़ाई जाती है। तो हम अपने अवगुणों को तो बांटे, लेकिन किसी का दुर्गुण देख भी ले तो उसको ढक्कन लगा के ढक दें, उसको फैलाएं नहीं, क्योंकि फैलाने से हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन कईयों का नुकसान हो जाएगा। और अगर हम नुकसान करेंगे तो उसमें हिस्सेदारी हमारी भी होगी, शेयर होल्डर हम भी हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को एक मुरली में बाबा ने कहा था, तुम भी दत्तात्रेय हो, सबसे गुण उठाने वाले, और जो इनपुट होता है वो आउटपुट होता है। जब हम गुण उठाएंगे तो बांटे बिना रह नहीं सकेंगे, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा काम है गुण उठाना, बांटने की प्रक्रिया तो नेचुरल है, वो तो हो ही जाएगी। ओम शांति।